दौला पुस्तक 12वीं लेक्चर नंबर 3।
ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं कम्मठ जनिय वेण वहि समुत्तिन्नये जिनेन मिऊं वेयण महाहियारं विविहियारं परुएमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है उसका नाम है वेदना, और उसमें अभी हम वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार देख रहे हैं। ये 12वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 पर हम आ गए, 16। हमने ज्ञानावरण के बारे में जो उसमें कौन कौन से पद होते हैं, फिर उसका स्वामी कौन है, तो उत्कृष्ट पद का स्वामी वो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि वो पर्याप्त वगैरह वगैरह, वो तो बंधक बंदर सतो उसके भी होगा। और अन्य जो एकेंद्रियादि अन्य जो पर्याय बताइए उसमें सत्व की अपेक्षा, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय ने उत्कृष्ट बंध किया अनुभाग का, और कांडक घात होने के पहले वो उसमें जाके उत्पन्न हुआ, क्योंकि कांडक होने के लिए अंतर्मूर्त लगता है, जब तक वो अंतिम फाली नहीं गिरेगी तब तक उसका उत्कृष्ट अनुभाग होता है, उस अपेक्षा से देखना है। पेज नंबर 16। हाँ देखिए, ये अभी हम 12वां नंबर का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने ज्ञानावरण की बात देखी और वैसा ही दर्शनावरण मुनि और अंतराय के बारे में होता है, ये बात भी हमने देखी। अब ये नया सूत्र हम पढ़ेंगे। सामित्तेन उक्कस्य पदे वेयणीय वेयणा भावदो उक्कस्या कस्य। स्वामित्व से उत्कृष्ट पद में वेदनीय वेदना, वेदनीय वेदना ने वेदनीय कर्म, वेदना ने कर्म, वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग। भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट ने उसका अनुभाग उत्कृष्ट किसके होता है, वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किस जीव के होता है, ये उनका प्रश्न है। यह सूत्र सुगम है, उसका एक्सप्लेनेशन करने प्रश्न तो समझ में आवे ऐसा है। अब उसका उत्तर जो है वो 13वें सूत्र में दे रहे। अन्न दरेण खवगेण सुम साम्प्राय शुद्धि संजदेण चरिम समय बद्ध लयम जस्स तम संत कम्म थी। अन्यतर क्षपक, पेज नंबर 16। क्षपक यानी क्षपक श्रेणी वाला सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत 10वें गुणस्थान वाला जीव, जिस जीव के द्वारा अंतिम समय में बंध होता है, क्योंकि हमने देखा था यह स्थिति और अनुभाग का बंध तो 10वें के अंत समय तक है, तो वहां वेदनीय यानी साता वेदनीय बंध रहा है, तो जहां उत्कृष्ट विशुद्धि है वहां उसका बंध भी अनुभाग भी उत्कृष्ट है। स्थिति मिनिमम है, अनुभाग उत्कृष्ट है, तो ऐसे जीव ने जहां उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है, और जिस जीव के इसका सत्व होता है यानी वहां बांधने के बाद तो उसका सत्व बना रहेगा, क्योंकि जितना अनुभाग बांधा है अब वो अनुभाग कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, और ना ही वो अनुभाग बढ़ने का भी सवाल है, वो मैक्सिमम अनुभाग है 10वें के अंत समय में जो अनुभाग बांधा, तो वहां तो परमाणु भी पड़े रहेंगे, भले वो अंतर वो कितने 12 मुहूर्त के बांधे है, परंतु सत्ता में जो अनुभाग था वो भी उसके निमित्त से उसका भी उत्कर्षण हुआ, इसलिए वो सत्ता में भी वो उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा रहेगा अभी, तो जो उसने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा ऐसा जीव लिया, और जिसके इसका सत्व होता है, इस तरह से दो बातें बताई। अब आगे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। वेद व अवगाहना आदि की कोई विशेषता विवक्षित नहीं है। अन्यतर क्षपक कहने से, देखो ये क्षपक श्रेणी कौन सा जीव चढ़ता है, स्त्री वेदी वाला, पुरुष वेदी, नपुसक वेदी, भाव की बात है। उसकी अवगाहना भी कुछ हो सकती है, संस्थान भी कुछ होता है, ये अन्य अन्य की बात है ना। तो कहते हैं कि वेद व अवगाहना आदि की बात है, योग भी पलटते रहते हैं यहाँ पर। तो कहते उसकी कोई अपेक्षा किए बिना इन्हें वो कुछ भी हो सकता है। तो वेद अवगाहना आदि की कोई विशेषता विवक्षित नहीं है, यह बतलाने के लिए सूत्र में अन्यतर पद कहा है। क्योंकि यहाँ जो अनुभाग का बंध हो रहा है, यहाँ विशुद्धि के निमित्त से, और सभी जीवों की विशुद्धि यहाँ आके नौवे गुणस्थान से ही समान होती है, दसवें में भी सबकी विशुद्धि समान है और सबका अनुभाग समान बंधेगा यहाँ पर अंत में जाके। और यहाँ अंतिम समय में बताया, क्योंकि अनुभाग बंध प्रति समय अनंत गुणा यहाँ अधिक बढ़ रहा है, अनुभाग वेदिनी का अनुभाग। और स्थिति बंध में हमने देखे थे अंतर्मूर्त के बाद वो स्थिति घटती चली जाती है, उतनी की उतनी स्थिति अंतर्मूर्त तक बनती है। स्थिति के बारे में अंत में इतना कहेंगे, यहाँ अंत समय कहेंगे। अनुभाग की बात प्रति समय विशुद्धि बढ़ती है, तो अनुभाग में प्रति समय डिफरेंस होता है बंध में। अब क्या कहते हैं देखो, ये पेज नंबर 16 पर हम देख रहे थे 13वें सूत्र का अर्थ। वेद व अवगाहना आदि की कोई विशेषता विवक्षित नहीं है, किसी भी वेद के साथ, किसी भी अवगाहना के साथ, किसी भी संस्थान के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ा हो जीव, ये बतलाने के लिए सूत्र में अन्यतर पद कहा है, कोई भी। अक्षपक का प्रतिषेध करने के लिए क्षपक पद का निर्देश किया है, क्योंकि क्षपक में ही बात हो गई, उपशम श्रेणी में भी ये बात नहीं होगी क्योंकि वहां की विशुद्धि कम है, यहाँ ज्यादा है। सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत के निर्देश का प्रयोजन शेष क्षपकों का प्रतिषेध करना है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्रायिक के अंत समय में वो बंधा है, तो उसके पूर्व वाले क्षपक को यहाँ नहीं लेना है, उसका इतना अनुभाग उत्कृष्ट नहीं बंधा था। द्विचरम आदिक समयों में बांधे गए अनुभाग का प्रतिषेध करने के लिए चरिम समय में बांधा गया, ऐसा कहा है, क्योंकि उपांत समय को हा या द्विचरम लास्ट बट वन उस समय में अनुभाग कम बंधा था और यहाँ अनुभाग अधिक बंधा है, क्योंकि विशुद्धि यहाँ अनंत गुणी है। द्विचरम समय क्या, देखो सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत क्यों कहा, क्योंकि अन्य गुण स्थानों की बात नहीं यहाँ पर। हाँ, शेष क्षपक है ने आठ क्षपक कहाँ से कहेंगे, आठवें गुणस्थान वाले को भी क्षपक कहेंगे, नौवे वाले को भी कहेंगे, दसवें वाले को भी कहेंगे, तो यहाँ दसवें को ले लिया, एक बात तो ये हुई। अब उसमें भी दसवें में भी कंडीशन क्या डाली, अंत समय। उपांत समय में अनुभाग का बंध कम था, अब यहाँ मैक्सिमम हो रहा है। हमने देखा ना अनुभाग बंध श्रेणी में प्रति समय बढ़ता चला जाता है, शुभ कर्मों की बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए चरिम समय में कहा है। पेज नंबर 16 नीचे से दूसरी लाइन, यानी ये हो रही बात कि वेदनीय की वेदना, वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किस जीव के होगा, तो ये बता रहे कि क्षपक जीव। अन्यतर कहने से कोई भी वेद वाला, कोई भी अवगाहना वाला, किसी भी वो तो योग वाला, तो उसके क्षपक वाले के सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में इतनी कंडीशन बंद है। उस समय जो बंधा है कौन सी बंध रहे है, साता वेदनी वहां बंध रहे है और उसका अनुभाग बंध रहा है। इस सूत्र के द्वारा अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत, ये पूरा उसका गुणस्थान का नाम, उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी होता है, उसके उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है, यह प्रकट किया गया है। केवल यही जीव उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी होता है यह बात नहीं है, केवल यही नहीं तो और कौन होगा, किंतु जिस जीव के उसका सत्व रहता है, क्योंकि इतना अनुभाग बांधने के बाद वो अनुभाग कम होने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो उसका सत्व तो आगे भी रहेगा,
ये कह रहे हैं। हाँ, वह भी उसका स्वामी है। तो कहते उसका सत्व किसके होता है, ऐसा पूछने पर इन जीवों के उसका सत्व होता है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते, क्योंकि हमें प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कितने काल तक इसका वो सत्व रहेगा, ये अनुभाग का सत्व कब तक रहेगा, तो वो बता रहे। तम क्षीण कषाय वीदराग छदुमत्थस्य वा सजोगी केवलिस्य वा तस्य वेयनीय वेणा भावदो उक्कस्सा। क्या कहते हैं, उसका सत्व अभी ये कहाँ पर बांधा है, दसवें के अंत में, तो उसका सत्व किसके होगा, तो क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त के होता है। ये नाम कौन से गुणस्थान का है मनीषा बेन, ग्यारहवें का नाम उपशांत कषाय होगा। यहाँ क्या लिखा है, पहले हमने क्षपक वाले को बताया, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय, वो ग्यारहवें में कैसे जाएगा, नहीं समझे, क्षपक श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो क्षपक श्रेणी वाला आठवां नौवां दसवें के बाद नियम से बारहवें जाएगा, उपशम वाला उसके आठवां नौवां दसवां अलग है, वो शुरुआत से उपशमक है, तो उसको दसवें में जाएगा, फिर उसको उपशांत मोह में जाएगा। और यहाँ क्या कहा है, उपशांत कषाय या उपशांत मोह, यहाँ क्षीण कषाय लिखा, क्षीण कषाय ने अभी पूरा भी मोहनीय क्षय हो चुका है और वीतराग हुआ है, पूर्ण वीतरागता हो गई यहाँ पर, परंतु फिर भी छद्मस्त है। सर्वज्ञ कब होगा, तेरहवें में, ये बारहवें का नाम है। तो उसका सत्व क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त के होता है, अथवा सयोगी केवली के होता है, क्योंकि जो वहां सत्व बना है वो आगे भी रहेगा, क्योंकि वो तो बांधा हुआ मान लेते, बारह मुहूर्त तक तो बांधा है, तो वो बांधे हुए तो बारह मुहूर्त तक तो है ही है, तो इसलिए सहयोगी अवस्था में भी उसका सत्व पाया जाएगा, एक बात। और वह पूर्व जो परमाणु थे उसका भी अनुभाग बढ़कर उस समय इतना होता है, क्योंकि उसमें भी उत्कर्षण हो जाता है, अतएव उनके वेदनीय की वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती। ये समझ में आई बात, सत्व की अपेक्षा, बंध की अपेक्षा, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय अंतिम समय, सत्व की अपेक्षा बारवा और तेरवा भी। कहते साता वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर क्षीण कषाय सयोगी और अयोगी गुणस्थान को प्राप्त, अयोगी को भी लिया ना यहाँ पर, वहां तो सयोगी केवल इससे वहां इतना ही रह दिया, उसमें तो अयोगी भी ले लिया, प्राप्त हुए जीव के। और यहाँ केवल हिंदी में लिया है ऐसा भी नहीं है, ऊपर प्राकृत में जो स्पष्टीकरण है ना टीका, उसमें भी लिखा है सादा वेदनीय उक्कस अनुभागम बंधीय, पहली 14 के नीचे की लाइन, 14वें सूत्र प्राकृत, उसके नीचे की लाइन में पढ़ रही हूँ, मिला, क्षीण कषाय सजोगी अजोगी गुणठानानी उगयस्स, है ना, तो यही कहते हैं, क्षीण कषाय सयोगी और अयोगी गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव के इन गुणस्थानों में वेदनीय का उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है। शंकाकार है ना, वहां 14 के नीचे सूत्र में नहीं है, सूत्र में तो उन्होंने भी नहीं लिखा था, सूत्र में जैसा है उसकी अभी तो शंकाकार पूछेंगे। हाँ, कहते शंका, सूत्र में अयोगी पद का निर्देश किए बिना अयोगी केवली गुणस्थान में उत्कृष्ट अनुभाग होता है, यह कैसे जाना जाता है, ऑब्जेक्शन यही, क्योंकि सूत्र में तो इतना ही लिखा था और उसका वीरसेन स्वामी ने अयोगी को भी डाला, तो प्रश्न पूछ रहे अयोगी को क्यों कह रहे, सूत्र में तो नहीं बताया था। द्वितीय वा शब्द से उसका परिज्ञान होता है, यह भी यहाँ नहीं कहा जैसा, यानी स्वयं शंकाकार ही उसका उत्तर देना चाहता है कि दो बार वहां आया ना, क्षीण कषाय विदराग छदमस्त वा सजोगी केवलिस्स वा, क्योंकि दूसरे वा से उसका ग्रहण होता होगा, ऐसा भी यहाँ नहीं कहा जा सकता, कारण कि पंचिंद्रियस्य वा इत्यादिकों में स्थित वा शब्द के समान द्वितीय वा शब्द उक्त अर्थ के समुच्चय में प्रवृत्त है,
यानी वो सब क्षीण कषाय और सहयोगी के लिए मिलकर वहाँ शब्द है। जैसे पहले भी शब्द आया था वहाँ कि किसके होता है पंच इंद्रिय से, देखो हमने ज्ञानावरण में देखा था। ये है 14 पेज पर था। नौ नंबर के सूत्र में ये सबके बाद वहां वहां शब्द है ना, ए इंद्रिय सवा, बी इंद्रिय सवा वगैरह वगैरह, पंच इंद्रिय सवा, सन्निस सवा, तो उसमें तो वहां शब्द का अर्थ उन्होंने क्या किया, उसका सबका संग्रह कर लिया। जैसे यहाँ पर भी वहां शब्द का वैसे अर्थ होना चाहिए, तो आप अयोगी कहां से लाए आपने, उसका समाधान कर रहे। पंचेंद्रिय सेवा इत्यादि को में स्थित वा शब्दों की प्रवृत्ति उक्त अर्थ के समुच्चय में भले ही हो, वहां तो सबका समुच्चय करने की भले यूज किया है क्योंकि वहां उनका दूसरा अर्थ नहीं है, किंतु यहां स्थित द्वितीय वा शब्द अनुक्त अर्थ के समुच्चय में प्रवृत्त है, जो नहीं बताया है उसको यहाँ इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि उक्त समुच्चय रूप अर्थ की सिद्धि प्रथम वा शब्द से ही हो जाती है, यानी उनको सबको मिलकर कहना है इसलिए वा शब्द से वो बात होती है, और दूसरा जो वा शब्द है वो जो नहीं बताया है उसके लिए होता है। अतएव द्वितीय वा शब्द को अयोगी केवली का ग्रहण करने में निमित्त समझना चाहिए, अथवा दूसरे पद्धति से भी बता रहे, द्वितीय वा शब्द भी उक्त अर्थ का समुच्चय करने के लिए है, तो फिर अयोगी केवली का ग्रहण कैसे होता है, ऐसा पूछने पर कहते हैं कि उसका ग्रहण अर्थपत्ति से होता है। ये कैसे वो बता रहे, यानी वो अयोगी केवली कैसे समझना उसकी बात बता रहे। अर्थपत्ति ने वो तो उसके उपपत्ति हो जाती है, अर्थ से उसमें समझ में आ जाती है बात। देखो सूत्र में क्षीण कषाय और सयोगी केवली का ग्रहण यह प्रकट करता है कि शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का घात विशुद्धि केवली समुद्घात अथवा योग निरोध से नहीं होता। क्योंकि क्या कहना चाहते हैं, अभी जो शुभ प्रकृतियां बांधी है उसका अनुभाग मैक्सिमम बंधा कब, दसवें के अंत समय में, अब उसका घात कब होगा, घात होने का तो कोई निमित्त चाहिए, तो यहाँ के बाद क्या हो रहा है, अभी तो विशुद्धि है और वो भी समान चल रही है, तो उतनी विशुद्धि कायम, अभी 12वें की जो विशुद्धि तो कायम है, तो वहां तो कुछ घात होने का प्रयोजन नहीं है। दूसरा कार्य क्या होता है, तो केवली समुद्घात, वहां पर भी इसका घात नहीं होगा, हाँ स्थितियों का घात हो रहा है और ये शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का तो घात होगा ही नहीं। अब कहते योग निरोध से भी अनुभागों का घात नहीं होता है, तो क्षीण कषाय और सयोगी गुणस्थानों में स्थिति घात व अनुभाग घात के होने पर भी, अनुभाग घात किसका होता होगा वहां पर, अशुभ प्रकृतियों का है ना, शुभ का तो कभी अनुभाग कांडक घात होते तो अशुभ में ही होते, अभी तक कहीं पर भी मोक्ष मार्ग में शुभ के अनुभाग का घात हुआ ही नहीं है, होने पर भी शुभ प्रकृतियों के अनुभाग का घात वहां नहीं होता यह सिद्ध होने पर स्थिति व अनुभाग से रहित अयोगी गुणस्थान में शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होता है यह अर्थापत्ति से सिद्ध है। अर्थापत्ति ने उसमें से वो तो अनुमान से निकल सकते हैं, उसमें से वो गर्भित है उसका अर्थ। देखो 12वां वाला उसने उसमें क्यों ज्यादा है, क्योंकि 10वें में बांधा है। 13वें वाले को क्यों है, क्योंकि वहां पर ही उसने बांधा हुआ है, पर जब बांधा था तो 7वां में पड़ा हुआ भी उत्कृष्ट अनुभाग को पहुंचे थे कुछ परमाणु, तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग अयोगी तक भी चलता है, ये कहना चाहते हैं। सयोगी के भी है क्योंकि अयोगी के भी है, उसका अनुभाग का नाश होने का भी कोई वहां प्रयोजन ही नहीं है, ये कहना चाहते हैं। फिर शंका, सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के उत्कृष्ट अनुभाग व स्थिति का बंध 12 मूर्त प्रमाण होता है, समझ में आई बात? वो 12 मुहूर्त है और उसके बाद एक 12वें गुणस्थान का अंतर्मुहूर्त, 13वें का लंबा काल हो सकता है, तो अयोगी के सब में तो नहीं होगा, ऐसे इनका कहना है। वह सयोगी और अयोगी के भला कैसे पाया जा सकता है, प्रश्न चिन्ह करना। ये यदि कहा जाए 12 मुहूर्तों के भीतर ही उन दोनों गुणस्थानों को प्राप्त हुए जीवों के वह पाया जाता है, ऐसे भी जीव हो गए 12वें के बाद अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त में 13वां 14वां कर दिया, उन्हीं के होता ऐसा कहो तो पाया जाता है, आगे नहीं पाया जाता। सो यह कहना भी उचित नहीं है, यानी जो मैं अभी बहुत बार कह चुकी है वही बात अभी बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि वेदनीय क्षेत्र वेदना के उत्कृष्ट होने पर उसी के उसका भाव भी नियम से उत्कृष्ट होता है, इस सूत्र के साथ विरोध होगा। क्या कहते हैं पहले? वो कहते ऐसा भी उचित नहीं है। प्रश्न समझ में आता है? फिर से सुनो, 10वें गुणस्थान के अंत में स्थिति कितनी बंदी है? 12 मुहूर्त। तो वहां जो समय प्रबद्ध वेदनीय का, क्योंकि पूरा समय प्रबद्ध वेदनीय का ही था, तो उसमें 12 मुहूर्त की स्थिति बंदी, तो निषेक कितने तैयार हुए? 12 मुहूर्त की, यानी उसमें तो जो अबाध माइनस कर दो यथायोग्य, फिर भी 12 मुहूर्त कहेंगे हम, तो 12 मुहूर्त के निषेक बनेंगे। तो जो उस समय बंधे हुए निषेक 12 मुहूर्त में तो खिर जाएंगे, तो उन्हीं निषेकों में तो अनुभाग बांधा था, तो 12 मुहूर्त में नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट हो जाएंगे तो 12 मुहूर्त के बाद जो सहयोगी रहते हैं तो उनके तो इतना अनुभाग नहीं पाया जाएगा। तो कहते हैं कि, तो कहते स्वयं ही रूल आउट करते, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमने ये क्षेत्र वेदना में ये बात देखी थी कि वेदनीय क्षेत्र वेदना के उत्कृष्ट होने पर, यानी उसका उत्कृष्ट कब होगा, वेदनीय का क्षेत्र उत्कृष्ट कब होगा? प्रतर लोक पूरण में, लोक पूरण में, क्योंकि उसने पूरे लोक व्यापा है और उसका वेदनीय का क्षेत्र उत्कृष्ट हुआ है, केवली समुद्घात में उसने पूरा लोक व्यापा है और तभी उसका अनुभाग भी उत्कृष्ट है। तो कहते इस सूत्र के साथ फिर विरोध आएगा। क्यों विरोध आएगा? क्योंकि केवली, हाँ, केवली समुद्घात करने वाले तो 13वें के अंत में करेंगे और उसका जो यथायोग्य काल होगा, तो नियम से उत्कृष्ट होता है। ये भी कहा नियम से उत्कृष्ट होता है, यानी केवली समुद्घात करने वाले के हर जीव के उसका उत्कृष्ट होता है, और हर अरिहंत जो है केवली समुद्घात करने वाले वो अंतर्मुहूर्त में ही 13वां पार करते, ऐसी बात नहीं है। लंबे काल तक 13वें में रहने वाले भी केवली समुद्घात करते हैं और उसके भी जो क्षेत्र उत्कृष्ट होगा तब भाव उसके वेदना अनुभाग उत्कृष्ट होगा, ये बात सिद्ध होती है। नहीं, स्वयं शंकाकार ही उसको रूल आउट कर रहे हैं। ख्याल में आती है बात? तो उस सूत्र के साथ विरोध होगा। समाधान करते हैं, नहीं, क्योंकि बांधे गए अनुभाग स्वरूप से परिणत पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र स्थितियों में स्थित प्रदेश थोड़े पाए जाते हैं। क्या कहा? अभी जो बांधा गया अनुभाग है कभी 10वें के अंत में वेदनीय साता वेदनीय का उत्कृष्ट अनुभाग बांधा, तब सत्ता में वेदनीय कर्म कितना था? तो पल्ले का असंख्या तो अभाग था, बराबर। तो उसमें अनुभाग की अपेक्षा उत्कर्षण हुआ है, कुछ परमाणु अनुभाग की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग तक पहुंचे हैं, पूरा का पूरा पहुंचा ऐसे हम नहीं कहेंगे, कुछ परमाणु तो इतना अनुभाग की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हमेशा वृद्धि के लिए उत्कर्षण के लिए बंध की अपेक्षा आती है। जिस समय अनुभाग का उत्कृष्ट बंध है तब सत्ता के कुछ परमाणु उत्कृष्ट अनुभाग रूप से परिणमित होते हैं और वो उत्कृष्ट अनुभाग वाले परमाणु सत्ता में पड़े रहेंगे। कब तक? अयोगी तक। ये कहना चाहते, हाँ, उसके समय जब जिस समय बंद हो रहा है उसी समय सत्ता के कुछ परमाणु उत्कृष्ट अनुभाग रूप से परिणमित होते हैं। स्थिति की बात नहीं, बंद कितना है वो तो स्थिति का है। स्थिति का देखो देखो, स्थिति उत्कृष्ट होने का सवाल ही नहीं है। देखो, सत्ता में अनुभाग पड़ा है, किसी भी निषेक में क्यों ना हो, क्योंकि प्रत्येक निषेक में जघन्य से तो जो उसको यथायोग्य अनुभाग पड़ा था, तो वहां जो जहां पड़ा था उसमें से कुछ परमाणु और अधिक अनुभाग तक पहुंच जाते हैं, सारे पल्ले के असंख्यात विभाग तक के कुछ परमाणु, पूरे के पूरे उतना अनुभाग होता ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अनुभाग रचना हमेशा पहले स्पर्धक से हम ऊपर बताएंगे वहां पर। सबका नहीं होता, जैसे हमें देखते स्थिति का उत्कर्षण कैसे होता है, निशकों के कुछ परमाणु ऊपर चढ़ते स्थिति में, उसके लिए कंडीशन क्या है, अधिक स्थिति बननी चाहिए। अभी यहाँ क्या है, अनुभाग का उत्कर्षण, उसमें कंडीशन क्या है, अधिक अनुभाग बनना चाहिए। तो सत्ता में पड़े हुए कुछ परमाणु, सभी के सभी ने कम अनुभाग वाले, वो जो बंधे हुए अनुभाग के समान हो जाते हैं, इसको कहेंगे अनुभाग का उत्कर्षण। हो गए ही, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी परमाणु सभी निशिकों में पड़े रहते, अनुभाग की ऐसी रचना है। जैसे हम स्थिति की रचना एक समय से लेकर सारी स्थिति बताते, अनुभाग की रचना भी जघन्य स्पर्धक से उत्कृष्ट स्पर्धक तक बताएंगे, और ये रचना हर निशेक में अलग अलग है। तो निशेक कहीं का भी क्यों ना हो, वहां का अनुभाग बढ़ता है, और ये परमाणु थोड़े रहेंगे ना, सबके सब थोड़े ही होते हैं, परंतु उनकी सत्ता बनी रहेगी। जो कोई उत्कृष्ट अनुभाग है तो उस अनुभाग का सत्व उत्कृष्ट कहेंगे हम। फिर इसको पढ़ते देखो, क्योंकि बांधे गए अनुभाग स्वरूप से परिणत पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र स्थितियों में स्थित प्रदेश थोड़े पाए जाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, ऊपर प्राकृत पढ़ते हैं, देखते उस सूत्र के साथ विरोध होगा तो कहते नहीं, पलिदोवमस ऊपर प्राकृत में पढ़ रही हूँ, मिला क्या, पलिदोवमस असंख्य जित भाग में तट्ठी दिशु, यानी पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र स्थितियों में ठिद प्रदेशानम, उसमें स्थित प्रदेशों का बंधाणु भाग स्वरूपेण परिणदानम, यानी बंध के अनुभाग स्वरूप से परिणत हुए ऐसे पल्ले के असंख्यात वे भाग मात्र स्थितियों में जो परमाणु पड़े हैं उनके थोवाणम वो लंबा दो, यानी वो थोड़े परमाणु उस रूप परिणत हुए वो उसके वो पाए जाते हैं वहां पर। उत्कृष्ट, हाँ वैल्यू, उत्कृष्ट की वैल्यू सबके समान, पूरा का पूरा हम कहें नहीं, परंतु उत्कृष्ट तक पहुंचे उसमें कुछ, यानी उत्कृष्ट स्पर्धक वहां बने रहे, बन गए, जैसा बंद हुआ उस जाति का वहां सत्ता का अनुभाग उतना कहेंगे हम। देखो शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है, यानी सभी स्थितियों में जो थोड़े प्रदेश उत्कृष्ट अनुभाग रूप से पाए जाते हैं ये कैसे जाना आपने, तो कहते हैं समाधान, वह बंधे उपकड़दी इस वचन से जाना जाता है, यानी बंध में उत्कर्षण होता है, किसका, स्थिति का भी अनुभाग का भी। जैसे हम मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे तो उसने तीव्र पाप किया तो सत्ता में थोड़े पाप का जो अनुभाग कम था असाधा का कहेंगे तो वो उत्कृष्ट हो जाता है, क्योंकि बंध के अनुसार उसमें उत्कर्षण होता है। स्थिति में भी देखते हम, स्थिति में भी अभी एक इंद्रियों में कम स्थिति बांधकर पंचेंद्रिय में आया है और उसकी शक्ति स्थिति कितनी है, तो ज्ञानावरण की तो 30 कोड़ा कोड़ी, तो वहां बंधा हुआ जो कुछ सागर का 2/3 3/7 जो है वो कहाँ तक पहुंचता है, बंधे हुए समय से लेकर 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तब उसमें बंध की नए बंध की अपेक्षा, बंध में उत्कर्षण होता है, उत्कर्षण होता है कुछ परमाणु उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंचे, सारे के सारे नीचे ऊपर चले जाते हैं ऐसा उसका अर्थ नहीं है, ये कहना चाहते हैं। समझ में आई बात, क्योंकि सत्ता में कितनी स्थिति पड़ी थी पल्ले के असंख्यात विभाग, और अभी बंध कितना हो रहा है, 12 मुहूर्त का स्थिति, 12 की तो 12 मुहूर्त तक के निशे की उसमें ही अनुभाग होगा, ऊपर के निशेकों में कम होगा ये प्रश्न है, तो तो कहते नहीं, वहां के भी थोड़े परमाणु उत्कृष्ट अनुभाग रूप से परिणमित हो जाते हैं और उनकी सत्ता बनी रहती है, अंतिम निषेक तक बनी रहेगी। ख्याल में आई बात ये? क्योंकि प्रत्येक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट तक अनुभाग पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब बंधा था तो 12 मुहूर्त बंधे थे, उसमें तो सारा उत्कृष्ट अनुभाग बंध रहा था, परंतु उसके निमित्त से बंध के समय से सत्ता में पड़े हुए पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण जो निषेकों में परमाणु है, उसमें से कुछ परमाणु उत्कृष्ट अनुभाग रूप से परिणमित होते हैं। और उनकी सत्ता कब तक रहेगी? अयोगी क्या अयोगी में बनी रहेगी उसकी सत्ता? जब तक वेदनीय है तब तक उसकी सत्ता बनी रहेगी। अब कहते तव अतिरिक्तम अनुकस्सा, उत्कृष्ट किसके होते हैं? वो क्षपक वगैरह वगैरह बताया, इनको छोड़कर बाकी क्या हो गए? अनुत्कृष्ट। उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना है, यह सुगम है। यानी दसवें के उपांत समय भी इतना उत्कृष्ट अनुभाग नहीं था, क्योंकि उसमें तो कम अनुभाग बंधा था, उसकी अपेक्षा तो कम था ना। अंतिम समय में उत्कृष्ट बांधा है, क्योंकि श्रेणी में अनुभाग का प्रति समय, शुभ प्रकृतियों में अनुभाग का प्रति समय बढ़ना होता है। स्थिति में तो अंतर्मूर्त के बाद कुछ घटना होता है, वैसी बात नहीं है। अब 16 एवं नामा गोदानम। देखो, एक बात आपको ख्याल आए होगी, इन्होंने प्रश्न सामान्य से पूछा था कि वेदनीय का उत्कृष्ट वेदना किसके होती है, तो असाता का भी तो कह सकते हैं, उन्होंने साता को लिया। यानी असाता का उत्कृष्ट अनुभाग का बंध अति संकलेश वाले को होगा, उसके अनुभाग से भी साता का जो उत्कृष्ट अनुभाग है, दो प्रकृतियों में असाता का अनुभाग अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे, साता का भी अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे, दो में से साता का वो ज्यादा है, इसलिए वेदनीय का नाम लिया तो साता की बात उन्होंने उठाई। देखते एवं नामा गोदानम, इसी प्रकार नाम व गोत्र के विषय में भी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? दसवें के अंत में कौन सा नाम बन रहा है बोलो? गोत्र तो उच्च गोत्र है, यश कीर्ति। यहाँ तो जनरल इन जनरल प्रकृति पर उसकी कोई भी बन रही है वहां पर, तो यश कीर्ति बन रही है और उसका उत्कृष्ट अनुभाग बन रहा है वहां पर। कारण की आगे लिखते देखो 19 पेज पर, यश कीर्ति ये नाम कर्म में से एक ही बन रही है यहाँ पर, और उच्च गोत्र का सूक्ष्म सांप्रायिक शपक के अंतिम समय में उत्कृष्ट बंध उपलब्ध होता है। यह अनुभाग की ही चर्चा है, यहाँ वो स्थिति शब्द डालने का प्रयोजन नहीं, उसका मिनिमम स्थिति बंध है, यहाँ अनुभाग का बंध उत्कृष्ट है, क्योंकि अभी सर्वत्र अनुभाग की ही चर्चा चल रही है। शंका, जिस प्रकार उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त मिथ्यादृष्टि जीव के घातिया कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामित्व दिया गया है, उसी प्रकार इनका क्यों नहीं दिया जाता? समझ में आई प्रश्न? देखो, साता हो, वेदनी हो, गोत्र हो, इनमें अशुभ प्रकृतियां भी है, तो मिथ्यादृष्टि संकलेश वालों को जहां हमने ज्ञानावरण का उत्कृष्ट देखा था, वैसे उनमें से अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट उसको क्यों नहीं कहा? प्रश्न यही है, क्योंकि घातिया कर्मों में वेदनीय नाम गोत्र में दो दो है ना, शुभ भी है अशुभ भी है, तो उसका नाम क्यों नहीं लिया? ये उनका प्रश्न है। कहते समाधान, नहीं, क्योंकि एक तो मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट संकलेश के द्वारा शुभ प्रकृतियों का बंध नहीं होता, यानी साता वेदनीय यशस्वी आउट ऑफ क्वेश्चन। दूसरी बात, वहां के अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग सत्व की अपेक्षा भी, क्या कहना चाहता है, ये महत्व की बात है। अभी वहां के अशुभ यानी हम असाता की बात कही, असाता और साता की कंपैरिजन करेंगे, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट संकलेश हो सभी कंडीशंस के साथ जो असाता वेदनीय का अनुभाग बनता है, और वो क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के साता का अनुभाग बनता है, दोनों हम उसकी डिग्री अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे, तो कहते हैं कि वहां के अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग सत्व की अपेक्षा भी अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के द्वारा बांधा गया शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग कितना अनंत गुणा पाया जाता है। उसका अर्थ समझ में आता है। असाता के उत्कृष्ट अनुभाग से साता का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणा ज्यादा है। असाता का कहा हुआ मिथ्या दृष्टि संकलेश वाला संगी पंचे, और ये क्षपक, दोनों की कंपेयर करना है। अविभाग प्रतिच्छेदों में ना आएंगे उसको, तो असाता से ये साता का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणा है, इसलिए उन उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामित्व मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं दिया गया है। ये समझ में आई बात? अब कहते हैं सामित्तेन उपकस्सपने पदे। अब क्या क्या हो गया? वेदनी हुआ, नाम और गोत्र हुआ, आयु की बात रहेगी। हाँ, सामित्तेन उपकस्स पदे आवो वेयणा भावदो उपकस्या कस्स। स्वामित्व से उत्कृष्ट पद में आयु कर्म की वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है? ये भाव पूछा है। अब अनुभाग प्रतिच्छेद अविभाग प्रतिच्छेद किसके ज्यादा होते हैं? सूत्र सुगमे ने प्रश्न समझ में आवे ऐसा है, उसका उत्तर देते हैं। अन्न दरेन अपमत्त संजदेन सागार जागार तप पायोग विशुद्धेन बद्धल्लयम जस्सतम संतकम्म मत्थी। यानी बांधने वाला और सत्ता वाला दोनों लिए। बांधने वाले में देवायु को बांधने वाला संयमी लिया। देखो साकार उपयोग युक्त जागृत, क्योंकि तो वहां विशुद्धि ज्यादा होती है ना, और उसके योग्य विशुद्धि युक्त। उसके योग्य क्यों कहा, अति विशुद्धि क्यों नहीं कहा? आयु का बंध अति विशुद्धि में नहीं होता, इसलिए तत्प्रायोग्य शब्द आता है। विशुद्धि युक्त अन्यतर जिस अप्रमत्त संयत के द्वारा अप्रमत्त लिया, क्योंकि प्रमत्त भी बांधता है अप्रमत्त भी बांधता है, अप्रमत्त की विशुद्धि ज्यादा होगी। अप्रमत्त संयत के द्वारा आयु कर्म का बंध होता है, और जिसके इसका सत्व होता है, ये बांधने के बाद उसका सत्व पड़ा रहेगा वहां, तो उसके सत्व होता है, उसको भी लिया। अब कहते उसका एक्सप्लेनेशन, अवगाहना आदि से होने वाली विशेषता का अभाव बतलाने के लिए सूत्र में अन्यतर पद कहाँ है? ये तो हमेशा जैसे उन्होंने बताया, अन्य कोई भेद की अपेक्षा यहाँ नहीं है। अप्रमत्त गुणस्थान में ही उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है, प्रमत्त गुणस्थान में वह नहीं होता। अब यहाँ आयु की बात पूछ रहे हैं कि आयु कर्म में भाव की जो उसकी वेदना भाव की अपेक्षा ने अनुभाग किसके ज्यादा होता है? तो कहते देवायु बांधने वाला अप्रमत्त वाला, और उसमें भी कैसा लिया है? साकार यानी ज्ञान उपयोग वाला जागृत और अप्रमत्त वाला, और उसकी योग्य विशुद्धि यानी जिस विशुद्धि के साथ आयु का बंध होता है ऐसी जी लिए, तो उसके इसका सत्व होता है। हाँ, सहनन की होगी क्योंकि हाँ जो उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला जो है वह तो उत्कृष्ट सहनन वाला ही वहां जा सकता है। नहीं, तीन तो ग्रहवेग तक है, और वज्रेश्वर नाराज वाला ही सर्वा सिद्धि में जाएगा। अवगाहना आदि से होने वाली विशेषता, अवगाहना हो या उसका जो कुछ वेद हो भाव वेद, देखो क्या कहते हैं, ये क्रोधमान मायलोभ के भी उसके उदय हो, कोई हो सकता है ना। क्रोधमान मायलोभ का उदय तो सबके है, संज्वलनों का, उसमें भी विशेषता हो सकती है। तो कहते हैं कि अन्यतर पद कहाँ है? अप्रमत्त, आवाज आ रही है ना, अप्रमत्त गुणस्थान में उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, प्रमत्त गुणस्थान में वह नहीं होता। यानी छठे सातवें दोनों में बंद हो रहे, क्योंकि छठे में देवायु का बंध शुरू हुआ है, वो सातवें में चलता रहता है, मतलब छठे वाले को नहीं लिया, सातवें वाले को लिया, क्योंकि वहां विशुद्धि ज्यादा होती है। यह जतलाने के लिए अप्रमत्त संयत के द्वारा ऐसा कहा है। दर्शनोपयोग व सुप्त अवस्थाओं में उत्कृष्ट अनुभाग का बंधन नहीं होता, यह बतलाने के लिए साकार उपयोग सहित। व आप पूछेंगे सातवें गुण स्थान में भी कोई सोता है क्या? निद्रा प्रज्वला का उदय तो है वहां पर भी, स्थान वृद्धि वगैरह का नहीं है, भले वो कितना भी कम अनुभाग वाला उदय हो परंतु है उदय, इसलिए ये बात बताई। जागृत ऐसा निर्देश किया है। अत्यंत विशुद्धि एवं अत्यंत संक्लेश से आयु का बंध नहीं होता, क्योंकि आयु का बंध उसके योग्य मध्यम परिणाम में होता है, इसको कहते तत्प्रायोग्य। यह जतलाने के लिए उसके योग्य विशुद्धि से संयुक्त, उसके योग्य ने आयु के योग्य, जिसने आयु के उत्कृष्ट अनुभाग को बांधा है वह उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी होता है। यह बतलाने के लिए बद्धल लयम ऐसा सूत्र में निर्देश किया है, यानी बांध लिया है उसने, बांधा है। बंध से रहित द्वितीयादिक समयों में, यानी अभी बंध हुआ, आयु बंध होकर रुका, तो दूसरे समय में उसका वो अनुभाग पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहे। तो बंध से रहित द्वितीयादिक समयों में, द्वितीय तृतीय आगे के समयों में क्या उत्कृष्ट अनुभाग होता है या नहीं होता, ऐसा पूछने पर जिसके उसका सत्व है वह भी उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी होता है, यह कहा है। यानी जो बांधा हुआ है वो सत्व जिसके पाया जाता है उसको भी उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाएगा। अब इस सत्व किसके होता है वो पूछेंगे ऊपर। तम संजदस्य वा अनुत्तर विमानवासीय देवस्य वा तस्स आवोवेयण भावदो उक्कस्सा। उसका सत्व संयत के होता है, संयतन में अभी वो सातवें से छठे में आएगा तो उसका सत्व होगा कि नहीं होगा, क्या अनुभाग कम हो जाएगा? होगा ना, आयु बांधी है उसका सत्व बना रहेगा, तो उसका सत्व संयत के होता है। यहाँ अप्रमत्त का नाम नहीं लिया, संयत ने प्रमत्त अप्रमत्त जब तक रहे उसका तो उसको रहेगा। ऐसा उसका सत्व संयत के होता है, अथवा अभी वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो भी होगा, शपक श्रेणी चढ़ेगा तो होगा कि नहीं होगा? मनीषा बेन, जिसने आयु बांधी है वो क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, ख्याल में है ना? देखो उसका सत्व संयत के होता है।
कारण बताओ तो समझ में
क्या? हाँ नहीं चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा पूछ रहे, क्यों नहीं चढ़ेगा? आयु बांध किया हुआ वो क्षपक श्रेणी क्यों नहीं चढ़ता, ये प्रश्न पूछ रहे।
उसका उत्तर ये है कि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव मुक्त ही होता है, और दूसरा आयु बांधेगा तो उसको वापस आना पड़ेगा। ऐसा विचार करके सुनना, नहीं आता है तो पूछना, कोई डरने का कारण नहीं है, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है गुणस्थान का। लेकिन ये तो कॉमन सेंस है ना, क्षपक श्रेणी बोल रहे हैं, क्षपक श्रेणी का ही अर्थ सारे कर्मों का क्षय किया हुआ जीव ऊपर जा रहा है।
और ऐसा नहीं कि आयु का बंध किया है और फिर बांधी हुई आयु भी उसने क्षय किया, ऐसा नहीं हो सकता। आयु बांधी तो उसको नई स्वभाव की है, ऐसा जीव अर्यंत कैसे होगा? क्योंकि उसको अभी मुक्त होना है ना, चरम शरीरी जीव जो उसी भव में मोक्ष जाने वाले है वो आयु का बंधन नहीं करते, ये नियम है। देखो फिर पढ़ते, क्षय नहीं होता है, वो एक एक समय करके उदय में आएगी। हाँ वो कदली घात वगैरह वो अलग प्रकरण है। हाँ तो कहते उसका सत्व, ये जो आयु का उत्कृष्ट अनुभव, इन जनरल आयु की बात की, पर इन जनरल करके उसमें भी किसका होता है, तो देवायु के जो अप्रमत्त संयत ने जो उत्कृष्ट अनुभाग बांधा है उसकी बात है। तो उसका सत्व संयत के होता है, अथवा अनुत्तर विमानवासी देव के होता है, यानी वो बांध कर अनुत्तर में जन्मा तो उसका सत्व रहेगा कि नहीं रहेगा, क्यों अनिष्ट है तो रहेगा। अतएव उसके आयु कर्म की वेदना भाव की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है।
हेलो हेलो,
आवाज एकदम कम हो गया थोड़ी। पढ़ेंगे आगे, देखो। वह संयत के होता है ऐसा कहने पर, आपने पूछा था ना ऊपर की सवरा सिद्धि ने अनुत्तर वाली, ये बात यहाँ लिखी है, किसके होता है तो बांधने वाले के होगा और सातवें और छठवें जब बंधने के बाद उसका भी सत्व होगा और वहाँ मरकर अनुत्तर विमानवासी हुआ उसके भी होगा, क्योंकि वहाँ जाने वाले की उत्कृष्ट जो देवायु बांध रहे हैं, स्थिति भी उत्कृष्ट है, अनुभाग भी उसका उत्कृष्ट है। तो संयत कहने पर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्रायिक उपशामकों का उपशामक कहा है ना, तथा उपशांत कषाय व प्रमत्त संयतों का ग्रहण किया गया है। उपशामक यानी उपशम करने वाले, और उपशांत यानी जिनका उपशम पूरा हो गया, इसे ग्यारहवें वाले, और प्रमत्त संयत भी लेना, ये सब उसमें आ जाते हैं, क्षपक वाले नहीं लेना है। शंका, प्रमत्त संयतों में उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व कैसे पाया जाता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आयु के उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर प्रमत्त संयत गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव के उसका सत्व पाया जाता है, क्योंकि देवायु तो बांध ली है और छठा सातवां गुणस्थान तो चलता रहेगा, क्योंकि आयु बंध के बाद अभी मरण तक छठा सातवां तो उसका वो सत्व जो बांधा है वो उतना ही रहेगा कायम। शंका, संयता संयतादिक नीचे के गुणस्थानों में स्थित जीव उत्कृष्ट अनुभाग के स्वामी क्यों नहीं होते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग के साथ आयु को बांधने पर संयता संयतादि अधस्तन गुणस्थान में गमन नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? जिसने उत्कृष्ट देवायु जो बांधी है ऊपर के अनुत्तर विमानों की, वो बांधने के बाद अभी वो छठे सातवें से नीचे पांचवें में नहीं आएगा, ये नियम कह रहे हैं। ख्याल में आई बात? रेगुलर हम कहेंगे छठा सातवां कहाँ, छठे से गिर के पांचवें में चौथे में जा सकता है, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला भी जा सकता है, परंतु ये कौन सी बात है? जिसने ये उत्कृष्ट अनुभाग के साथ आयु बांधी है वो पांचवें में नहीं जाएगा। छठे सातवें में ही रहेगा। हाँ, उसके नीचे नहीं, क्योंकि अनुत्तर में जाने वाले हैं। हाँ, श्रेणी में मरण तो होता हो ही सकता है, परंतु छठे से नीचे नहीं आएगा, ये नियम बताए। हाँ, यानी उत्कृष्ट अनुभाग के साथ आयु को बांधने वाला, ये बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, मगर कहाँ क्या है? यानी उत्कृष्ट अनुभाग के साथ देवायु बांधने वाला नीचे पांचवे आदि में नहीं आता है। हम सामान्य से कहते हैं ना, क्या उपशम श्रेणी चढ़ने वाला नीचे छठे से पांचवे में चौथे तक आता है फिर ऊपर पड़ जाता है, वो तो अनेक बार हमने, वो तो इन जनरल कथन है, पर यहाँ स्पेसिफिकली ये उत्कृष्ट अनुभाग के साथ आयु बांधने वाला जो ऊपर के जो अनुत्तर विमानवासियों की जो बात है वो अभी नीचे नहीं आएगा। शंका, उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर उसे अपवर्तनाघात के द्वारा घात कर पश्चात अधस्तन गुणस्थानों को प्राप्त होने पर उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी क्यों नहीं होता? क्या कहते हैं? इनका ये कहना है, किसी ने उत्कृष्ट आयु बांधी तो हम तो ये भी देखते हैं घातायुष को वो भी हो सकता है, हमने तो देखे है ना 33 सागर की आयु बांधकर वो 10,000 सागर के देव में उत्पन्न, उन्होंने घातायुष को किया, तो घात किया कि नहीं उन्होंने स्थिति का, ये प्रश्न है उनका। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट अनुभाग को बांधकर उसे अपवर्तनाघात के द्वारा घात कर पश्चात अधसन गुणस्थानों को प्राप्त होने पर उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी क्यों नहीं होता? ये स्वयं कह रहा है, अनुभाग का घात किया, और नीचे आया तो उत्कृष्ट कहाँ रहा? वो अनुभाग भी अनुत्कृष्ट हो गया, स्थिति घटाई तो अनुभाग भी घट गया। समाधान नहीं, क्योंकि घातित अनुभाग के उत्कृष्ट होने का विरोध है। अरे उसने अनुभाग का घात किया कह रहे हो, और उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी उसको कहें, कैसे कहेंगे हम? वो अनुभाग का घात करेंगे, वो घातायुष्क हो जाएंगे तो नीचे के गुणस्थानों में आ सकते हैं। नहीं समझे? द्वीपायन मुनिराज की बात आती है, 33 सागर की आयु बांधी हुई थी, वो घात किया, घात किया तो 10,000 वर्ष के लिए, और फिर उसके अनुभाग भी कितना हीन हो गया। ख्याल में आई बात? हो सकता है ना, यहाँ लिखा है ना। पर जो घातित अनुभाग है उसको उत्कृष्ट कैसे कहेंगे? वो अनुभाग का घात हो गया। हाँ, आगे दिखा है, देखते हैं। उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने पर उसका अपवर्तनाघात नहीं होता, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु वह घटित नहीं होता। यानी अपवर्तनाघात हो सकता है, जिसको हम कहेंगे ये कदली घात अलग है, ये घातायुष्क वाली बात है। क्योंकि ऐसा मानने पर एक तो उत्कृष्ट आयु को बांधकर पश्चात उसका घात करके मिथ्यात्व को प्राप्त हो अग्निकुमार देवों में उत्पन्न हुए द्वीपायन मुनि के साथ व्यभिचार आता है। वो देखो कितने स्पष्ट लिखा है ना। हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वो 10,000 वर्ष की आयु की, इसलिए होता है। कितना कितने आचार्य कहते हैं कि उसका घात नहीं होता, परंतु उसके साथ वो द्वीपायन का, हाँ, किसी ने जो ऐसा कहते वो बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो द्वीपायन का प्रसिद्ध उदाहरण है, वो अग्निकर्मार देवों में उत्पन्न हुए थे। हाँ, मिथ्यात्व तक गए वो। हाँ, पांचों की बात क्या, वो मिथ्यात्व में गए, परंतु उसका जैसे स्थिति घटाई तो अनुभाग कितना घटाया उन्होंने, देवायु का अनुभाग भी घटाया। देखो वो घटित नहीं होता, यानी जो कहते हैं कि उत्कृष्ट अनुभाग का बंद होने पर उसका अपवर्तनाघात नहीं होता, यानी वो घातायुष्क नहीं होते, वो कथन बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? उत्कृष्ट होगा तो जिसने घात किया है, घातायुष का जो हुआ है उसका अनुभाग कट डाउन हो गया, अब बाद में वो आता है नीचे। ये तो मिथ्या दृष्टि तक हो सकता है ना। ये कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं है, फिर से पढ़ते हैं। उन्होंने बताया उत्तर उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है, जिसने वह अनुत्तर का बंद किया है सातवें गुण स्थान में, और बाद में वो छठे में आया, और फिर ऊपर उपशम श्रेणी चरित तब भी, तो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ वो पांचवें में नहीं आएगा। क्योंकि घात होता है, घात होता है का अर्थ क्या है, स्थिति भी घात होती है और अनुभाग का भी घात होता है। अब उसका उत्कृष्ट कहाँ रहा? स्थिति और अनुभाग का घात करके आ सकता है, पर तब उसको हम उत्कृष्ट अनुभाग नहीं कहेंगे। उत्कृष्ट अनुभाग कब तक कहेंगे? छठे सातवें में रहेगा, या श्रेणी चढ़ेगा, या मरकर देव में जाएगा, तो उसके उत्कृष्ट अनुभाग रहा, ये कहना चाहते। कहते ऐसा अगर मानते अपवर्तनाघात नहीं होता तो कहते हैं तो उत्कृष्ट आयु को बांधकर, यानी 33 सागर की आयु को बांधकर पश्चात उसका घात करके वो 10,000 की रहेगी, मिथ्यात्व को प्राप्त हो अग्निकुमार देवों में उत्पन्न हुए द्वीपायन मुनि के साथ व्यभिचार आता है। दूसरे, इसका घात माने बिना महाबंध में प्ररूपित उत्कृष्ट अनुभाग का उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर भी नहीं बनता। किसी ने उत्कृष्ट अनुभाग बांधा तो उसका अंतर कितना हो सकता है? तो एक बार ये उत्कृष्ट अनुभाग बांधकर 33 सागर की आयु बांधी थी, फिर उसका अपवर्तना किया, और फिर अंत में जाकर फिर उसने फिर 33 सागर की आयु बांधी, तभी तो अंतर घटित होगा। हाँ, मुनि होते हुए वो नीचे के गुणस्थान में, हाँ, उसके साथ साथ हुए होंगे, क्योंकि हमने देखा था ना, वो तो मुनि होते हुए अशुभ तेजस निकला ना, छठे गुण स्थान में अशुभ तेजस निकलता है, तो उसके बाद घात हुआ, इसे उसी समय जो मिथ्यात्व में चले गए, ऐसा कहेंगे हम करने के पश्चात बाद में मिथ्यात्व में गए, ऐसे कहा, क्योंकि मिथ्यात्व के जाने के बाद वो घात, क्योंकि मिथ्यात्व में जाने के बाद अगर घात करते हैं तो उत्कृष्ट अनुभव के साथ मिथ्यात्व में गए ऐसा सिद्ध होगा, नहीं समझे? मिथ्यात्व में घात करते ऐसा कहेंगे तो मिथ्यात्व के साथ वहां गए थे ऐसा होगा, पहले घात करके मिथ्यात्व में गए, इसी से सिद्ध हो रहा है ना। आगे देखो, अनुदिश दिशा ने अनुदिश आदि नीचे के देवों से संबंध रखने वाले आयु को बांधते हुए उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता, क्योंकि जो उत्कृष्ट अनुभाग है वो ऊपर के जो है, अनुदिश आदि नीचे के देवों में नहीं होगा, क्योंकि वहां की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 32 सागर, हाँ, और ऊपर 32 सागर एक समय से लेकर 33 सागर तक के, यह बतलाने के लिए अनुत्तर विमानवासी देव के यह कहा गया है। शंकाकार पूछते हैं, उत्कृष्ट अनुभाग के साथ 33 सागरोपम प्रमाण आयु को बांधकर अनुभाग को छोड़ केवल स्थिति के अपवर्तनाघात को करके सौधर्मादि देवों में उत्पन्न हुए जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामित्व क्यों नहीं पाया जाता? प्रश्न क्या है? अरे उसने स्थिति का घात किया, अनुभाग का नहीं किया, तो 33 सागर का वो सौधर्मादि में 2 सागर का होकर, 2.5 सागर का होकर उत्पन्न हुआ, ऐसा क्यों कहो ना, ऐसा ये पूछ रहे शंकाकार। समाधान नहीं, क्योंकि अनुभाग घात के बिना आयु की उत्कृष्ट स्थिति का घात संभव नहीं है। देखो कितनी विशेषताएं बताई हैं। मैंने अनुभाग के घात बिना वो स्थिति का घात भी नहीं होता, पहले बताया ना। यहाँ क्या लिखा, अनुभाग घात के बिना आयु की उत्कृष्ट स्थिति का घात संभव नहीं है। इन्हें वो घातायुष्क नहीं होता। हाँ, अब कहते तव अदरितम अनुकस्सा, ये उत्कृष्ट की बात उन्होंने बताई, उससे भिन्न उसकी अनुत्कृष्ट वेदना होती है, वेदना है, यह सूत्र सुगम है, सूत्र नहीं सूत्र, सुदीर्घ चाहिए आप हैं बराबर, सुदीर्घ करो। अब 21 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे अभी, सामित्तेन जहन्न पदे। अभी तक हम उत्कृष्ट की बात की थी, ज्ञानावरण की उत्कृष्ट किसके होती है, वो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि पर्याप्त जागृत साकार वगैरह वगैरह सब अति संकलेश वाला, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोनी अंतर है, वेदनीय की दसवें गुणस्थान के अंत में बांधा है और उसका सत्व आगे के गुणस्थान में 12वें 13वें 14वें पाया जाता है, नाम गोत्र का भी ऐसा ही, आयु में वो तो उत्कृष्ट आयु बांधने वाला 7वें गुणस्थान वाला लेना, बांधने वाला वो लेना, सत्ता में 6ठे से लेकर 7वां तो है ही, 6ठा 7वां से उपशम श्रेणी पूरी उपशांत कषाय तक, और वहाँ अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ देव उसको भी सत्ता में उसका अनुभाग उत्कृष्ट है, और फिर बाद में नीचे के गुणस्थानों में क्यों नहीं उत्कृष्ट, उसकी चर्चा उन्होंने कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, ये उत्कृष्ट की बात हो गई, अब जगह सब की हो गई, ज्ञानावरण की भी बताई, वेदिनी की भी बताई, नाम गोत्र की बताई, आयु की भी बताई, अब हम जघन्य की बात यहाँ से करेंगे, अनुभाग जघन्य किसके होता है ये पूछ रहे हैं। सामित्तेन जहन्नपदे नानावर्णीय वेणा भावदो जहन्याकस्य। स्वामित्व से जघन्य ज्ञानावर्णीय की वेदना, भाव की अपेक्षा जघन्य किसके होती है? अपनी भाषा में ज्ञानावरण का जघन्य अनुभाग किसके होगा, ये पूछ रहे हाँ? हाँ, उसके अंत में होगा। देखो ये अशुभ प्रकृति है तो वहां क्षपक को लेना, जहां उसका क्षय अंतिम समय वाला जो क्षय होता है तब उसका अनुभाग जघन्य होगा। अभी हमने वेदनीय शुभ प्रकृति है उसमें अंत में उसका अनुभाग मैक्सिमम लिया। अब यहां देखते हैं, देखो स्वामित्व से जघन्य ज्ञानावरणीय की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। उसका उत्तर बताएंगे। अन्नदरस्य खवगस्य चरिम समय छदुमत्थस्य नानावर्णीय वेयणा भावदो जहन्ना, क्योंकि उसका सत्ता, उसकी सत्व कहाँ तक है? बारहवें के अंत समय तक है। वहां पर उसका अनुभाग मिनिमम होगा क्योंकि वो घटते घटते चला जाता है ना श्रेणी में। अन्यतर क्षपक अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ के ज्ञानावरणीय की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य होता है, यानी उसका अनुभाग सत्व यहाँ पर मिनिमम है। यहाँ अनुभाग बंध मिनिमम होगा कि नहीं होगा? हाँ मनीषा भी आप कुछ ढूंढ रही है, क्यों नहीं होगा? हाँ अनुभाग बंध कम होगा कि नहीं होगा? हाँ आपको कहना है उसका बंध ही नहीं है, बंध तो दसवें तक ही है। यहाँ सत्व दसवें में बंद रुकने के बाद भी सत्व कम हो रहा है प्रति समय, अनुसमयापवर्तन कहा है। स्थिति घटने के लिए अंतर्मूर्त लगता है स्थिति कांड घात के लिए, और श्रेणी में तो समय समय प्रति अनुभाग का अनंत गुणा घटना होता है, इसको अनुसमयापवर्तन कहते हैं। अनुभाग के लिए पहले कांडक होते थे, जब तक कांडक नहीं होता था अनुभाग उतना बना रहता था। श्रेणी में तो अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता है, अनंत गुणा घटता है अशुभ कर्मों का, इसलिए अंतिम समय में जो यहाँ तक उसका सत्व है वहां अनुभाग मिनिमम पाया जाएगा, ये कहना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं, अन्यतर क्षपक अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ के ज्ञानावरणीय की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य होती है। अवगाहनादिक विशेषों से उत्पन्न विशेषता की अविवक्षा बतलाने के लिए, यानी कितनी अवगाहना है, कौन सा संस्थान है, उससे कुछ मतलब नहीं है, इसलिए अन्यतर शब्द बताया, अन्यतर पद का निर्देश किया है। क्षपक पद के निर्देश का प्रयोजन अक्षपकों का प्रतिषेध करना है, जो क्षपक नहीं है उनको यहां नहीं लेना। क्षीण कषाय गुणस्थान के द्विचरम समयवर्ती आदि अधस्तन क्षपकों का निषेध करने के लिए अंतिम समयवर्ती छद्मस्थ के ऐसा निर्देश किया है, यानी बारहवें गुणस्थान के उपांत समय वाले को भी नहीं लिया, आदि में उसका नीचे उस, वो किसी को भी नहीं लेना, अंतिम समयवर्ती बारहवें गुणस्थान वाले को लेना। शंका, अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के जघन्य अनुभाग बंध को ग्रहण कर वहां जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं बतलाया? समझ में आई प्रात, क्योंकि वहां तो मिनिमम स्थिति बांधी उसके अंतर्मूर्त ज्ञानावरण की दसवें गुणस्थान के अंत में, और वहां उसका अनुभाग भी मिनिमम बांधा, तो उसको क्यों ले लेते हैं? उत्कृष्ट में तो उसको वेदनीय में तो लिया था दसवें गुणस्थान के अंत में बांधकर उसका सत्व आगे तक बताया, ऐसे यहां पर भी जघन्य बंध करा के अनुभाग का आगे भी उसका सत्व बताओ, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ तो जघन्य अनुभाग बंध नहीं है, सत्व में वो जघन्य होता है, बंध से भी सत्व जघन्य होगा, क्योंकि बंध कब तक है? दसवें के अंत में, और बारहवें गुणस्थान में अंतर्मूर्त काल है असंख्यात समयों का, उसके प्रति समय अनुभाग अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा घटा है, तब जाके वो जघन्य हुआ सत्ता में। क्या कहते हैं यहां से पढ़ेंगे, शंकाकार पूछते हैं, सूक्ष्म सांप्राय के जघन्य अनुभाग बंध को ग्रहण कर, यानी बंध में जघन्य कहाँ है? तो सूक्ष्म सांप्राय में, परंतु सत्व में जगन्य कब है? बारहवें के अंत में। तो उसको जगन्य स्वामित्व क्यों नहीं बतलाया? स्वामित्व कहने से बंध हो या सत्व हो हमें उससे मतलब नहीं है, जिसको जगन्य अनुभाग है उसको यहाँ ग्रहण करना है। समाधान, नहीं, क्योंकि जघन्य अनुभाग बंध की अपेक्षा वहाँ अनुभाग का सत्व अनंत गुणा पाया जाता है, वहाँ इन्हें दसवें में अनंत गुणा पाया जाता है, यानी दसवें में जो अनुभाग का बंध हो रहा है, दसवें में जो अनुभाग का सत्व है वो वहाँ अनंत गुणा है, और वो सत्व जो है वो आगे अंतर्मूर्त तक जाके अनंत गुणा हीन होने वाला है, ये कहना चाहते हैं। शंका, क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में भी चूंकि चिरंतन अनुभाग के सत्व को लेकर ही जगन्य स्वामित्व दिया गया है, क्या कहते हैं? चिरंतन ने लंबे काल से जहां पड़ा था अनुभाग सत्व जो पड़ा था, क्योंकि अंत में जो बांधा है, क्या कहते हैं, क्षीण कषाय गुणस्थान के अंतिम समय में भी चूंकि चिरंतन अनुभाग के सत्व को लेकर ही जगन्य स्वामित्व दिया गया है, अतएव क्षीण कषाय के प्रथम समय में भी जगन्य स्वामित्व दिया जाना चाहिए था, क्योंकि चिरंतन अनुभाग के सत्व की अपेक्षा दोनों में कोई भेद नहीं है। तो कहते यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समय में होने वाले अपवर्तन घात के द्वारा, ये अनुभाग का अपवर्तन प्रति समय हो रहा है, मैंने उसका नाम बताया था अनुसमयापवर्तन, अनुसमय अपवर्तन, प्रति समय अनुभाग अनंत गुणा हीन होता है, तो प्रत्येक समय में होने वाले अपवर्तनाघात के द्वारा प्रति समय अनंत गुणहीन होकर, अंतर्मूर्त के बाद अनंत गुणाहीन हो ऐसा नहीं, प्रति समय अनंत गुणाहीन होते होते क्षीण कषाय के अंतिम समय को प्राप्त हुए अनुभाग की अपेक्षा उसी गुणस्थान के प्रथम समय का अनुभाग अनंत गुणा देखा जाता है। ये बात समझ में आई बात? प्रश्न क्या था? दसवें गुणस्थान में बंध जो हुआ था वो तो अंतर्मूर्त का हुआ था, उसमें अनुभाग जितना पड़ा था पड़ने दो, परंतु जो सत्व की बात, जो वहां का जो सत्व था तो वो पहले बंधा हुआ था, वो तो नया बंधा हुआ नहीं था, तो जो पहला बंधा हुआ था वो बारहवें के पहले समय में कहो या अंतिम समय में कहो, चिरंतन अनुभाग की अपेक्षा तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो कहते ऐसा वो चिरंतन अनुभाग का ही बात भले है, वही अनुभाग प्रति समय घटते 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 इतना हीन हो गया, ये कहना चाहते। वो नया बांधा हुआ कम हुआ ऐसा नहीं है, वो सत्ता में जो पड़ा था, हम देखें सत्ता में जो कितने अंतर्मूर्त स्थिति पड़ी थी, दसवें गुणस्थान के अंत में बंध जो हुआ था वो सत्व से थोड़ा कम हुआ था, सत्ता में भी अंतर्मूर्त की स्थिति पड़ी थी और बंधी हुई भी अभी अंतर्मूर्त की भी कम बंधी हुई है, तो जो अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक पड़े है उसमें जो अनुभाग था, क्योंकि बढ़ने का सवाल नहीं, उत्कर्षण होने का सवाल नहीं है उनमें, इन्हें अनुभाग का बढ़ना तो नहीं है क्योंकि अशुभ प्रकृति है, तो सत्ता में जो पड़े थे पहले जो है उसी की बात यहाँ हो रही है। तो कहते वो भी प्रति समय अनंत गुणा घटते 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 जो बंद हुआ था उससे भी अनंत गुणा हीन हो गया, ये कहना चाहते। इसलिए सत्व की अपेक्षा जगन्य कब होगा? बारहवें के अंतिम समय में। समझ में आई इतनी बात? अब कहते तव अदरितम अजहन्ना, उससे भिन्न उसकी अजघन्य वेदना होती है, यानी वो बारहवें के अंत समय छोड़ो, वो बाकी सारे जो कहेंगे वो हाँ अजघन्य कहेंगे। यह सूत्र सुगम है। एवं दंशनावरणीयम अंतरायणम, इसी प्रकार दर्शनावरणीय और अंतराय की जघन्य और अजघन्य वेदना का कथन करना चाहिए, कारण कि एक तो ये दोनों घाती कर्म होने से ज्ञानावरणी की अपेक्षा इनमें कोई विशेषता नहीं है, फुल स्टॉप देना यहाँ। दूसरे कॉमा, यानी दूसरी बात,
प्रत्येक समय में होने वाले अपवर्तनाघात के द्वारा घात होकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में विनष्ट हुए अनुभाग की अपेक्षा ज्ञानावरण से इनमें कोई विशेषता नहीं है। यानी तीन घाती कर्म बारहवें के अंत में चले जाते हैं। जैसे हमने वहां ज्ञानावरण के उत्कृष्ट के साथ दर्शनावरण भी लिया था, मोहन्य भी लिया था अंतराय, जघन्य में मोहन्य को छोड़ा। लक्ष्मीबेन क्यों छोड़ा, उसको भी कहना चाहिए था ना। हाँ, तो उसके बाद उसके अभी स्वामित्व के लिए वो, हाँ तो दसवें के अंत में कहेंगे उसको, ख्याल में आई बात। इसलिए यहाँ तीन घाती कर्मों को लिया जो एक साथ बारहवें के अंत में नष्ट होते हैं। अभी इसमें भी उत्तर प्रकृतियों की बात नहीं है, उत्तर प्रकृतियों की बात लेना है तो दर्शनावरण में किसको लेंगे? हाँ, चार को लेंगे ना। हाँ, क्योंकि निद्रा प्रचला का उपांत समय में क्षय हो जाता है और अंतिम समय में वो चार रह जाते हैं, उसकी बात है। यहाँ उत्तर प्रकृतियों की बात नहीं की है। देखो, सामित्तेन जहन्न पदे वेयणीय वेयणा भावदो जहन्निया कस्य। देखो देखो, उत्कृष्ट किसके होता है? वेदिनी का अनुभाग, बंद की अपेक्षा दसवें के लास्ट और बाकी सत्व की अपेक्षा चौदहवें तक। अब पूछ रहे जघन्य किसके होती है? देखो, सामित्तेन जहन्य पदे वेयणीय वेयणा भावदो जहन्निय कस्य। अब यहाँ प्रश्न है, वो साता को लगाएंगे कि असाता को लगाएंगे? देखो, स्वामित्व से, स्वामित्व में नहीं, स्वामित्व से करो ब्रह्मा। जघन्य पद में वेदनीय की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य किसके होती है? यह सूत्र सुगम है। कहते अन्न दर खवगस्य चरिम समय भवसिद्धियस्य असाद वेदनीयस्य वेदय मानस्य तस्य वेयणीय वेयणा भावदो जहन्ना। देखो, हमारे तो दिमाग में भी नहीं आता ना ये, किस कहाँ लिए? असाता को लिया, क्योंकि हमने देखा था किसी को साता का उदय होता है, किसी के असाता का रहता है, तो उसका जो अंतिम समय क्षय का, तब उसकी जघन्य होगी। तो कहते असाता वेदनीय का वेदन करने वाले, वेदन करने वाले ने उदय वाले, यानी जिसको असाता वेदनीय का उदय है अंतिम समयवर्ती भवसिद्धिक अन्यतर क्षपक के। भवसिद्धिक यानी अभी संसारी जीव है, बाद में तो वो सिद्ध हो जाएगा, ये भवसिद्धिक का अंतिम समय है, चौदहवीं का अंतिम समय है। तो असाता वेदनीय का वेदन करने वाले अंतिम समयवर्ती भवसिद्धिक अन्यतर क्षपक के वेदनीय की वेदना भाव की अपेक्षा जघन्य होती है। अवगाहना आदि से होने वाली विशेषता यहाँ विवक्षित नहीं, यह बतलाने के लिए सूत्र में अन्यतर पद का निर्देश किया है। क्षपक के निर्देश का फल अक्षपक का प्रतिषेध करना है। अंतिम समयवर्ती भवसिद्धि कहने का प्रयोजन द्विचरम समयवर्ती आदि भवसिद्धिकों का प्रतिषेध करना है। शंका, द्विचरम समयवर्ती भवसिद्धिक के जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता? समाधान, नहीं क्योंकि उसके अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक द्वारा बांधे गए साता वेदनीय के उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व देखा जाता है। देखो क्या कहना चाहते, ये समझ में आई कुछ पॉइंट अरविंद भाई? द्विचरम में कैसा होगा, क्या लिखा है? देखो, उन्होंने क्या पूछा, द्विचरम समयवर्ती भव्य सिद्धि का जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं लिया? वेदनीय का जघन्य क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके
अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक द्वारा बांधे गए सातावेदि के उत्कृष्ट अनुभाग का सत्व देखा जाता है। हाँ क्यों है? हाँ तो बरोबर सत्ता में, उसकी सत्ता कब नष्ट हो जाएगी? अंत में होगी तो अंत में उसका कहेंगे उत्कृष्ट, उसको जगन्य कहाँ हुआ? नहीं समझे? उपांत वही उन्होंने क्यों कहा, ये मेरा प्रश्न है। उनके ही कहने में उसका उत्तर गर्भित है। देखो देखो साता वेदनी का क्षय कहाँ होता है? चौदहवें के अंत में। और असाता का कब होता है? नहीं, उदय रूप प्रकृति अंतिम समय में और अनुदय रूप प्रकृति उपांत समय में। अरे 72 प्रकृतियां जाती है ना उपांत समय में। देखो पहले क्या था सत्ता में? साता असाता दोनों थी। साता का उत्कृष्ट अनुभाग था। कब तक? जब तक साता की सत्ता बनी रहेगी उसका अनुभाग बना रहेगा। हमने देखा था ना अयोगी के भी पाया जाता है, तो अयोगी में किसी को साता का उदय है तो उसके असाता पहले समय में नष्ट हो जाएगा उपांत समय में, और जिसको असाता का उदय है वो साता उपांत समय में जाएगी। उदय की बात है, सॉरी सत्ता की बात है। उदय तो उसका थ्रू आउट चौदहवें में असाता का चला, पर सत्ता में साता बनी रही। तो सत्ता में साता कब तक है? उपांत समय तक। तो उपांत समय तक उदय असाता का था और सत्ता साता की थी, तो उसको हम जघन्य कैसे कहेंगे? वेदनीय में दोनों में जो कुछ है उसको हम सत्ता में लेंगे। अनुभाग सत्व किसका कहेंगे? वेदनीय का अनुभाग सत्व वहां उत्कृष्ट है, जघन्य कहाँ है? जघन्य कब होगा? साता रहा ही नहीं सत्ता में, अकेला असाता रहा। अब उसका जो है उसको जघन्य कहेंगे। हाँ उपांत समय में तो वेदनीय का उत्कृष्ट था, साता का उत्कृष्ट नहीं था, वेदनीय का उत्कृष्ट था क्योंकि वहां साता बनी थी। और वो साता उत्कृष्ट अनुभाग जो दसवें के अंत में बंधा था उसका उपांत समय तक वहां सत्ता थी, क्योंकि जो उदय रूप असाता होगी तो अनुदय रूप जो साता है वो उपांत समय में नष्ट हो जाती है। भले उसमें उत्कृष्ट अनुभाग था वो उपांत समय में नष्ट हुआ, अब अकेली असाता रही। देखो वेदनीय कहने से जिसका उत्कृष्ट है उसका, उसमें दोनों में जिसका उत्कृष्ट है उसको कहेंगे या जघन्य तो उसको कहेंगे। हमें क्या अकेला, अगर हम नीचे के गुणस्थानों में लेते, साता असाता दोनों है, एक का उदय एक का अनुदय है, तो वेदनीय का अनुभाग किसका कहेंगे? जिसका जो मैक्सिमम है उसको कहेंगे उसको ना। ऐसा नहीं है, असाता का उदय है किसी को, साता का उदय है, ऐसा ही लेना है। और जो चौदहवें में जो अनुदय रूप होती है, यहाँ सत्व की अपेक्षा चल रही है। उपांत समय में दोनों की सत्ता है ना, असाता की सत्ता है उसका उदय भी है, और साता का उदय नहीं पर सत्ता है, तो सत्व की अपेक्षा तो जो वेदनी का सत्व कितना कहेंगे, और जो वेदनी का उत्कृष्ट है उतना कहेंगे। किसी को साता का उदय होता है, किसी को असाता का होता है, अंत में वो है। हाँ वो तो उत्कृष्ट के साथ ही जाएगा ना, उसका वो अनुत्कृष्ट का उसे कुछ लेंगे नहीं, उसको जघन्य नहीं, उस जीव को जघन्य नहीं कहेंगे। हाँ नीचे के गुणस्थानों में जहां जिसका जो अनुभव होगा सत्व की अपेक्षा हम उसको एग्रीगेट कहेंगे। जैसे हम कहेंगे कर्मों की उत्कृष्ट सत्ता किसकी होती है? स्थिति की अपेक्षा मिथ्यात्व की, जिसकी किसी की होगी उसको उत्कृष्ट में लेंगे। अब यहाँ वेदनीय की, वेदनीय इन जनरल कहेंगे, तो वेदनीय का अनुभव किसका कितना कहेंगे? साता असाता में जिसका जो है उसको कहेंगे। उपांत समय तक साता भी है और असाता भी है, और साता का तो उत्कृष्ट है, तो सत्ता में भी उत्कृष्ट में चला जाएगा। वेदनीय का उत्कृष्ट होगा उपांत समय तक, और अंतिम समय में असाता का उदय होने के कारण वो जघन्य कहलाएगा। ये बहुत विशेषता है उसके अंदर। देखो हाँ सत्ता में तो दोनों पढ़े उपांत समय तक। देखो फिर यानी उपांत समय में दोनों की सत्ता है। इसलिए वेदनी का अनुभव उत्कृष्ट कहलाएगा, क्योंकि वेदनी कहने से इन जनरल देखो वहां क्या कहा, फिर से पढ़ती हूँ। द्विचरम समयवर्ती भव्य सिद्धिक के जगन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसके अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रदायिक द्वारा बांधे गए साता वेदनी के उत्कृष्ट अनुभव का सत्व देखा जाता है। क्योंकि जो अनुदय रूप प्रकृति उपांत समय में नष्ट होती, उपांत समय में है, अंत समय में नहीं है। उपांत समय में उसकी सत्व की विच्छित्ति होती है ना, उपांत समय तक वो है। यानी वहां तो है, उसको सत्व की विच्छित्ति होती नहीं, वहां तक है। देखो फिर शंका, असाता वेदनी का वेदन करने वाले के विशेषण किस लिए जा रहा है? ये महत्व की बात है, यानी असाता के उदय रूप की बात यहां पर चल रही है। देखो उसका उत्तर नहीं, क्योंकि जो साता वेदनी का वेदन कर रहा है यानी उदय साता का है, अब उसकी असाता उपांत समय में चली जाएगी। और जिसने द्विचरम समय में उदयाभाव होने से असाता वेदनी का नाश कर दिया गया है, उस साता वेदनी के उत्कृष्ट अनुभाग को धारण करने वाले अंतिम समयवर्ती भव सिद्धिक के, कहीं भव्य सिद्धिक लिखा है, कहीं भव सिद्धिक लिखा है, एक्चुअली प्राकृत में भव सिद्धिक ही लिखा है हर जगह। ठीक, फिर से पढ़ती हूँ मैं, समाधान फिर पढ़ रही हूँ। जो साता वेदनी का वेदन कर रहा है, देखो चौदहवें गुणस्थान में किसी के साता का उदय, किसी के असाता का है। और जिसने द्विचरम समय में उदयाभाव होने से उदय का, यानी जो अनुदय रूप जो प्रकृति है, असाता वेदनी का नाश कर दिया, यानी जिसको साता का उदय है वो उपांत समय में अनुदय रूप असाता का नाश करेगा, और जिस केवली के असाता का उदय है अनुदय रूप साता वेदनी को उपांत समय में नाश करेगा। ये नियम है, अनुदय रूप प्रकृति उपांत समय में नष्ट होती है। फिर से देखो, जो केवली भगवान है संयोगी से अयोगी हुए, तो संयोगी में उन्होंने एक भी प्रकृतियों का नाश क्षय नहीं किया है। हाँ, परंतु कितनी प्रकृतियां जो उदय रूप थी वो अनुदय रूप में चली गई। जो अनुदय रूप जो है, ऐसे 72 प्रकृतियों का उपांत समय में क्षय हो जाता है, वो सारी अनुदय रूप प्रकृतियां, उसमें सभी के लेना है, नाम की वगैरह वगैरह सब के ले लेना है। तो अभी उसमें हम केवल वेदनीय में लगाते हैं, तो वेदनीय कर्म में या तो किसी को साता का उदय होगा या किसी को असाता का, चौदहवें की बात चल रही। तो जो साता के उदय सहित है उसके असाता अनुदय रूप है, सत्ता में है, वो क्षय कब होगा? उपांत समय में। अब किसी को असाता का उदय है तो उसकी तो साता है वो अनुदय रूप है, सत्ता में पड़ी है, यानी सत्ता में वेदनीय के दोनों है, साता असाता, असाता का उदय चल रहा है, उपांत समय तक दोनों की सत्ता है। तो सत्व में तो साता का उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा है, यानी वेदनी का उत्कृष्ट कहेंगे, वेदनी का इन जनरल उत्कृष्ट अनुभाग कहेंगे, पर उपांत समय में वो साता नष्ट हो गई, अब अकेली असाता एक समय के लिए रही, केवल अंतिम समय में असाता अकेली रही और उसका अनुभाग जघन्य है, ये लेना। उसमें जो अनुदय रूप प्रकृतियां होती है वो उपांत समय में नष्ट होती है, हमने जो 85 प्रकृतियां रहती है उसमें से 72 प्रकृतियों का क्षय उपांत समय में होता है। आश्चर्य कुछ नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, बिल्कुल। अभी ऐसा भी है, क्या किसी को पूरे तेरहवें का काल साता का उदय रहेगा? तो चौदहवें में क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वो परिवर्तनशील प्रकृतियां है, साता और असाता अंतर्मुहूर्त में पलटती है नियम से। हाँ, वो कहने की वो असाता का नहीं के बराबर जो उसका अनुभाग है, अत्यंत हीन है, और कहते हो तो साता रूप से परिणमित होकर उदय में आ रही है, तो कहने की बात है। परंतु वो तो असाता रूप में भी उदय में आ रही है, उसका कार्य क्या है? कुछ नहीं है ना वहां पर। क्योंकि साता असाता किस में लगता है? जहां मोहनीय है तो उसको उसका लक्ष्य करके जो सुख दुख रूप परिणमता है उसको साता असाता नाम है। यहाँ तो ये परमाणु का ढेर है, उनके लिए कुछ नहीं है, उसका कोई कार्य तो है नहीं है, अनंत सुखी है वहां पर, साता का उदय हो या असाता का हो। साता का तो उत्कृष्ट है ही है पहले से। हाँ, यानी वेदनीय इन जनरल उत्कृष्ट कहलाए। देखो, साता का उदय हो या न हो, असाता का उदय वाले को भी लेते हैं। उपांत समय में सत्व किसका उत्कृष्ट है? हाँ, तो हम वेदनीय का उत्कृष्ट सत्व कहेंगे। वेदनीय जनरल का सत्व की क्या पोजीशन है? उसका सत्व उत्कृष्ट है। कब तक? उपांत समय तक। अंतिम समय में क्या पोजीशन है? अकेली असाता रही है, साता नष्ट हो चुकी है, अब उसका जघन्य मिनिमम पॉसिबल वहां पर है। हाँ, असाता जिसके अनुदय है, साता का उदय रहेगा, उसका तो नहीं, उसका तो उत्कृष्ट हम पहले बता चुके हैं। उसका उत्कृष्ट बंधा है ना दसवें में, दसवें वाले को भी है, बारहवें वाले को भी है, तेरहवें वाले को भी, चौदहवें के अंत समय अगर वो उसका उदय है तो तेरहवें चौदहवें के अंत समय में उसका उत्कृष्ट है। उदय में पर सत्ता तो बनी रहेगी जब तक वो सत्ता में है। हाँ, अनुदय साता का होता है या असाता का होता है? वो अंतर्मूर्त में पलटेगा। तो चौदहवें में जो उदय रूप प्रकृति है, उदय रूपी चौदह के पूरे काल तक वो उसका उदय रहेगा, उसमें फिर वो साता असाता नहीं होगा। हाँ, एक समय उपांत समय तक वेदनीय का उत्कृष्ट कहलाएगा, क्योंकि हम साता साता मिलकर उसका देख रहे हैं, और दूसरे समय में वेदनीय का जघन्य हो जाएगा। असाता वाले को ही जघन्य होगा, क्योंकि साता वाले का तो असाता नष्ट ही हो जाएगा, उसकी तो बात ही नहीं है। यानी एक समय पूर्व तक वेदनीय का उत्कृष्ट है, और एक समय पश्चात वेदनीय का मिनिमम जघन्य है। किसके? असाता के हृदय वाले को। वही जीव लेना है, वो कंडीशन है। इसलिए असाता वेदनीय का वेदन करने वाले ये बात बताई थी उन्होंने। ये कल फिर वो शंका समाधान फिर दोबारा लेंगे। देखो, अभी यही रुकते हम। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तखनम सदा देत हूँ।